distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos?
ये आवाज है क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट जगत के मशहूर नेता फिडेल कास्ट्रो की, जिनको अगर वर्तमान युग के लिविंग लेजेंड के रूप में पुकारा जाए तो उनके धुर विरोधियों को भी शायद ही कोई आपत्ति हो। लहीम शहीम कद, बेतरतीब दाढ़ी, चौड़ा माथा और जैतूनी हरी सैनिक यूनिफॉर्म, ये छवि है फिडेल कास्ट्रो की। कौन भूल सकता है वो दृश्य जब फिडेल ने गुट निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान विज्ञान भवन के मंच पर इंदिरा गांधी को सरेआम गले लगाया था। जाने माने पत्रकार सईद नकवी, जिन्हें कास्ट्रो को इंटरव्यू करने का मौका भी मिला था, कहते हैं,
इंदिरा गांधी को उसने छाती से लगा लिया था, वो लजाई शर्माई दुल्हन बन गई बिल्कुल, उनके समझ में नहीं आवे क्या करें। नेहरू की बेटी थी लिहाजा ये नेहरू उस तरीके से देखता था। देखिए, उसने बड़ा काम किया, लोग भूल जाते हैं। अब आप अभी तक एक जंग चल रही है वेस्टर्न सहारा में, पोलिसारियो और मोरक्को की, वेस्टर्न सहारा किसका है? आप हर जगह आपका दखल, आप जनाब वहाँ उनको सहारा दिए हुए हैं, पैलेस्टीनियंस किसी हद तक यतीम हो गए उसकी मदद के बगैर। हर जगह एक नेशनल लिबरेशन का मूड था, इथियोपिया, एंगोला, जहाँ जहाँ की फिर काउंटर रेवोल्यूशन रेगन के जमाने में आया, वहाँ वहाँ आप मौजूद थे जनाबे फिडेल कास्ट्रो साहब।
कास्ट्रो के भारत प्रेम की कहानी शुरू हुई थी 1960 में, जब सत्ता संभालने के बाद कास्ट्रो पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्हें जानकर धक्का लगा कि वहां का कोई होटल उन्हें अपने यहां रखने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशोल्ड से मुलाकात कर कहा कि आप मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के रहने का इंतजाम करें, वरना मैं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रांगण में तंबू डालकर वहां रहने लगूंगा। गनीमत ये रही कि अगले दिन न्यूयॉर्क का टेरेसा होटल उन्हें अपने यहाँ रखने को तैयार हो गया। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस में लिखा,
जब मैं कास्ट्रो से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपको पता है जब मैं न्यूयॉर्क के उस होटल में रुका तो सबसे पहले मुझसे मिलने कौन आया? महान जवाहरलाल नेहरू। मेरी उम्र उस समय 34 साल थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं था मेरे पास। नेहरू ने मेरा हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से मुझमें गजब का आत्मविश्वास जगा। मैं ताउम्र नेहरू के उस एहसान को नहीं भूल सकता।
उस मुलाकात के बाद भारत के लिए उनके मन में जो सम्मान और स्नेह पैदा हुआ, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। 1983 के गुट निरपेक्ष सम्मेलन की शुरुआत में ही फलस्तीनी नेता यासिर अराफात इस बात पर नाराज हो गए कि उनसे पहले जॉर्डन के शाह को बोलने का मौका दिया गया। नटवर सिंह उस सम्मेलन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने बीबीसी को बताया।
7वां नॉर्नाय समिट मार्च 1983 में हुआ था और उसके चेयरमैन थे फिडेल कास्ट्रो सुबह के सेशन तक, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी थी। तो सुबह का सेशन खत्म हो जाने के बाद जो मेरे डिप्टी से सत्ती लामा, वो आए के साहब बहुत बड़ी आफत पड़ गई है कि यासर अराफात बहुत नाराज हैं और अभी अपने जहाज में जाने को दिया है वापस। मैंने फिर इंदिरा जी को टेलीफोन किया, मैंने साहब ये बड़ी आफत हो रही है, आप यहाँ आ जाइए और मैं कास्ट्रो साहब को भी ले आइए विज्ञान भवन। उन्होंने ये कहा कि साहब उस सुबह के सेशन में मुझे जॉर्डन के किंग के बाद में बोलने को कहा और मेरी इंसल्ट हो गई है, मुझे उनके पहले बोलना चाहिए था। कास्ट्रो साहब आए और उन्होंने टेलीफोन किया यासर अराफात को, कहा बजाइए यहाँ विज्ञान भवन में, तो वो आ गए। तो कास्ट्रो साहब ने पूछा कि बताओ इंदिरा गांधी तुम्हारी दोस्त है कि नहीं है? उन्होंने कहा मिस्टर कास्ट्रो क्या कह रहे हैं आप, मेरी दोस्त नहीं, बड़ी बहन है। तो उन्होंने कहा फिर बड़ी बहन है तो यू बिहेव लाइक यंगर ब्रदर एंड कम टू द आफ्टरनून सेशन, तो आ गए।
सईद नकवी जब 1990 में फिडेल कास्ट्रो का इंटरव्यू लेने हवाना पहुंचे तो वहाँ के अफसरों ने उनको काफी इंतजार कराया।
तो इंटरव्यू मिला और हम गए, और वहाँ पे जनाब एक सस्पेंस हमेशा रहता है, वो बुला के बिठा लेते हैं, फिर अब आप इस कमरे से ना निकलिएगा, बाहर ना जाइएगा, टेलीफोन किसी वक्त आ सकता है। तो आप कमरे में बैठे होंगे, सस्पेंस हो ना हो, फिर साहब आया कि आप तैयार हो जाएंगे रात को, कब? मैं समझो भाई शरीफ आदमी 6 बजे शाम के, 7 बजे आठ बजे नहीं साहब, 10 बजे रात को उनकी गाड़ी आई, उनको लेके गई, एक साइड रूम में हम बैठे, घंटे भर के बाद आ पाए वही अपने फटीग्स में। मैं समझा साहब ये मुझे शायद सिगार पेश करे, मालूम हो गया सिगार पीना उसने छोड़ दिया था, और वो ब्रांडी एक अपने लिए एक मेरे लिए, वो गोया एक रैपोर कायम करे, फिर गुफ्तगु हो, वो तरीका अलग था, कल्चर अलग था। तो 1.5 घंटे इसी में लग गए कि दुनिया पे यहाँ से वहां तक उसने मुझे ताल लिया, मैंने उसे नाप लिया, अब हम जाके बैठे।
अच्छा ये बताएं, इस तरह की गुफ्तगु में जो इंटरप्रेटर रहता है वो एक
साहब जादूगरनी थी एक, हाँ आपको ये एहसास नहीं होता था कि इंटरप्रिटेशन हो रहा है। वो बोला गालिब का मिसरा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, यानी वो बोला उसे फट से, और यानी हमारे सवाल का जवाब जो कि बिल्कुल अजूबा रहा होगा, लेकिन इतना क्विक फायर औरत थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, और बिल्कुल इंस्टेंटेनियस इंटरप्रिटेशन विदाउट ए फ्लॉ। तो ऐसे ही गुफ्तगु हो रही, बिल्कुल अक्सर अंग्रेजी के लफ्ज वो समझ जाता है, वो उसकी उसको जरूरत नहीं होती थी, लेकिन वरना जवाब में बिल्कुल स्पेनिश का एक रुख जो कि क्यूबन एक डायलेक्ट है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी कई तरीके से बोली जाती, वैसे लैटिन अमेरिका में स्पेनिश कई लहजों में बोली जाती। तो साहब बड़े मज़े की बातें, और फिर बाहर एक छोटे से लॉन है, वहाँ जाके उसने सीट वीट का बंदोबस्त कर रखा था उसके मीडिया वालों ने। और साहब बात आप ये नहीं कर सकते कि आप 10 मिनट और 20 मिनट, अब आप फंसे तो फंसे, फिर 3-4 घंटे से कम गुफ्तगू नहीं होती। वो
फिडेल के साथ कुछ इसी तरह का तजुर्बा कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु का हुआ। वो जब 1993 में क्यूबा की यात्रा पर गए थे तो उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी भी उनके साथ थे।
उस समय रात को अचानक 11 बजे हम ज्योति बाबू और हम खाना वाना खा के सोने की तैयारी में थे, अचानक मैसेज आया कि कमांडेंट वुड लाइक टू मीट यू। तो ज्योति बाबू ने कहा कि इस समय क्या मिलने हैं, मतलब रात को 11 बजे। कहता नहीं नहीं वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं दफ्तर में, आपको आना ही है। तो ज्योति बाबू फिर बंद गले सूट वूट दोनों पहन के हम दोनों गए, और शायद 11:30 बजे पहुँचे, और तकरीबन 1:30-2 बजे तक बातचीत चली। वो तो रात भर भी काम करते थे फिडेल, और तब पता चला कि किस तरीके से डिटेल के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए, मतलब नेता का मतलब कि एक्चुअली वो डिटेल्स के ऊपर जो जितनी समझदारी होनी चाहिए वो तब नज़र आया मेरे को फिडेल कास्ट्रो के अंदर, किस गहराई के साथ किसी सवाल के अंदर वो जाते हैं। तो अचानक ज्योति बाबू से पूछने लगे कि अब स्टील का प्रोडक्शन कितना है इंडिया में, अब कोल कितने टन आ रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अब ज्योति बाबू को ये पूरे स्टैटिस्टिक्स जो है, मतलब वो नेचुरली अब किसी को भी सडनली अचानक आप पूछो तो पता नहीं होगी। तब फिडेल ने पलट के मेरे तरफ देख के कहा कि भाई ये तो बुज़ुर्ग है, ये तो बड़े नेता है, आप जैसे नौजवानों को तो ये सब याद होनी चाहिए। तो तब से लेकर बाद में फिर एक बार मिला फिडेल कॉमरेड फिडेल कास्ट्रो से, लेकिन तब से लेकर वो स्टैटिस्टिकल हैंडबुक में जेब में लेके जाता हूँ, मतलब क्यूबा जब जाते हैं ताकि पता नहीं कब कौन सी आंकड़ा वो पूछ ले।
अगले दिन जब ज्योति बसु और येचुरी भारत वापस आने के लिए हवाना हवाई अड्डे पहुंचे तो उन्हें VIP लाउंज में बैठाया गया। अचानक लाउंज को खाली करा लिया गया, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।
अब सडनली देखे कि फिडेल साहब पैदल आ गए वहाँ पे हमें विदाई करने के लिए। अब वो खुद आएंगे, और हमें याद है मेरे कंधे पे एक बैग लटका हुआ था, और फिडेल अपने यूनिफॉर्म में थे, और यूनिफॉर्म के साथ साथ हर बार एक गन होता उनके पास। तो बोला बैग के अंदर क्या है तुम्हारा, तो बोला क्या है, मतलब किताबें कुछ ऐसी चीज़ें होगी। तो ऐसे डे नहीं, यहाँ पे तो तुम आ गए लेकिन मेरे सामने कोई बैग लेके नहीं आता, पता नहीं उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि इतने बार मेरे को मारने की कोशिश की CIA ने, तो इसलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ता है। तो बोला आपके पास तो पिस्तौल है, तो ये पिस्तौल तो आप चला सकते हो अगर कोई आपके पास हमला करने आता है। तब उन्होंने बोला देखो इसकी राज समझ लो आप, यस हम समाजवादी देश पिस्तौल रखे हैं हम ताकि हमारे दुश्मनों को डराने के लिए, लेकिन इस पिस्तौल में कोई गोली होता नहीं है कभी 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 वो चलेगा नहीं, कोई गलती से किसी निर्दोष का जान ना जाए, लेकिन वो डराने के लिए रखता हूँ मैं, मतलब ये उन्होंने अपनी एक छोटी सी सीक्रेट हमें अभी तब बताई थी।
केंद्र में मंत्री और 2 राज्यों की राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा को भी कई बार फिडेल कास्ट्रो से मिलने का मौका मिला था। अल्वा ने BBC को एक दिलचस्प कहानी बताई जब फिडेल ने उनसे पूछा कि आपका वजन कितना है।
वो बैंक्वेट था उनके पैलेस में, तो बात करते करते मेरी वजन पूछी। मैंने बोला हिंदुस्तान में तो हमारी एक कहावत होती है कि नेवर रिवील व्हाट द साड़ी कैन हाइड, तो हमारी वजन ये वो कोई किसी को पता नहीं लगता है क्योंकि साड़ी से कुछ पता नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, और मुझे ऐसे पकड़ के उन्होंने उठाया एक मिनट और बोला कि अभी मैं आपकी वजन जानती हूँ। मैं तो शॉक में थी। और उसके बाद दो बार भी मिले, उनसे बहुत बातचीत हुई और ही वॉज रियली अ हीरो। मुझे तो कहूँ तो पूरे देशों में गई हूँ, उनके जैसे एक डायनामिक लीडर को मैंने कभी नहीं देखा।
एक दूसरी मुलाकात में फिडेल कास्ट्रो ने मार्गरेट अल्वा से पूछा कि अगर स्पेनिश लोग क्यूबा में न उतर कर भारत में उतरे होते तो इतिहास क्या होता। अल्वा ने तपाक से जवाब दिया, फिडेल कास्ट्रो एक भारतीय होते।
वो तो निकले थे भारत पहुंचने के लिए पर गलती से वेस्ट इंडीज में पहुंच गए क्यूबा में। तो मुझे कहा कि इतिहास देखो क्या होती अगर वो इंडिया में पहुंचते। तो मैंने बोला साहब क्या होता, फिडेल कास्ट्रो तो इंडियन होता। तो इतने हंसे, टेबल को ऐसे दबा के बोले कि दैट इज गुड, आई वुड हैव बीन सो हैप्पी। मुझे तो हिंदुस्तान के ऊपर बहुत प्यार है और मैं बहुत खुश होता अगर मैं हिंदुस्तानी होता।
फिडेल कास्ट्रो देस्ते ओरिएंटे अ बातिस्ता कॉम्बटियो, फिडेल कास्ट्रो देस्ते ओरिएंटे अ बातिस्ता कॉम्बटियो, ये ला पैट्रिया लिबर्टो कॉन सु सोम्ब्रास डिग्नामेंटे।
Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera.
Rehan Fazal, BBC, Delhi.